हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगन्नाथ रथ यात्रा के उपलक्ष्य में हम बहुत सारी कहानियाँ बता रहे थे और बहुत सारी कहानियाँ बाकी भी रह चुकी थी। तो आज 10 जुलाई है, जगन्नाथ रथ यात्रा होके बहुत दिन जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जगन्नाथ रथ यात्रा एक चिरंतन उत्सव है, हमेशा के लिए होते रहता है। और उस चिरंतन उत्सव के याद में भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में हर रोज़ रथ यात्रा होती रहती है। तो जगन्नाथ भगवान पृथ्वी पर उनका आविर्भाव कैसे हुआ, इसकी एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक ऋषि थे, उनका नाम था जैमिनी ऋषि, और वो जैमिनी ऋषि इसका वर्णन कर रहे हैं। ये स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है, वेदों के अंदर। तो जैमिनी ऋषि वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जो विष्णु हैं, उनके प्रथम पुत्र है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी के लोग जो हैं बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ा प्राप्त करते हैं, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा ऐसा बहुत कष्ट प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए क्या आसरा है, कैसे मुक्त हो सकते हो। तो भगवान कहते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर सभी लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे कौन सी जगह है, वो कहते हैं कि समुद्र के उत्तर दिशा में और महानदी के दक्षिण दिशा में एक क्षेत्र है, इसका नाम है श्री क्षेत्र या शंख क्षेत्र। वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर सब लोगों के दुखों का जो उपाय है वो आपको मिलेगा। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के आदेश के अनुसार वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर भगवान का सुंदर विग्रह है नीले रंग का, जिसका नाम है नील माधव। और नील माधव जहाँ पर खड़े हैं मंदिर में, उसके बाजू में एक बहुत बड़ा पेड़ है जो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि जिसके सामने खड़े होकर आप कोई भी इच्छा प्रकट करेंगे तो इच्छा पूरी हो जाती है। इंग्लिश में कहते हैं विश फुलफिलिंग ट्री, कल्प वृक्ष। और मंदिर के बाजू में बड़ा कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे जमीन पर एक सुंदर कुंड है जिसका नाम है रोहिणी कुंड। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं भगवान का, और उनके आंखों के सामने एक कौवा उड़ते उड़ते आता है, और वो जो रोहिणी कुंड है उसके जल को स्पर्श करता है। जैसे ही वो कौवा उस जल को स्पर्श करता है, तुरंत उस कौवे के शरीर का रूपांतर चतुर्भुज विष्णु जैसा बन जाता है। चार भुजा वाला है ना शरीर विष्णु का, नीला शरीर चार भुजा वाला, जैसा शरीर विष्णु दूतों का होता है वैसा शरीर वो प्राप्त करता है, और तुरंत वो वैकुंठ धाम चला जाता है। जैसे ही ये घटना घटती है, यमराज वहाँ आ जाते हैं, और यमराज जाकर दर्शन करते हैं लक्ष्मी और नारायण का नील माधव के रूप में। और यमराज प्रश्न करते हैं, हे भगवान, आपने तो मुझे ड्यूटी दिया है यहाँ पर जो लोग पाप करते हैं उनको दंड देने का, पर ऐसे फ्री में यहाँ पर सब पाप माफ़ हो जाएंगे तो मेरा काम क्या रह गया? कौवा भी जो इतना निचले योनि का जीव है उसको स्पर्श करते ही अगर मुक्ति हो जाती है उसकी तो मेरे लिए कोई काम ही नहीं बचता है, फिर सब काम यहीं ख़त्म हो जाता है। तो लक्ष्मी देवी कहते हैं कि आपका काम जो है वो दुनिया में सब जगह पर है, केवल इस जगह को छोड़कर। इस जगह में जो भी जन्म लेते हैं अगर वो अति पुण्यवान नहीं होंगे तो इस जगह पर जन्म नहीं ले सकते, और इस जगह में कोई बाहर से जीव आता है तो बाहर से आते ही वो इस जगह पे आने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो आपको दंड देने के लिए उसके पास पाप बचेंगे नहीं, इसलिए ये आपकी कर्मभूमि नहीं है, यहाँ पर आपको आकर अपना ड्यूटी नहीं करना है। आपको अगर भजन करने का है तो आ सकते हैं और भजन कर सकते हैं। तो यमराज जी समझ गए कि ये भगवान का धाम है, भौतिक धाम नहीं है। भौतिक धाम में लोग जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा का कष्ट भोगते रहते हैं, लेकिन भगवान के धाम में सब मुक्त रहते हैं। तो वहीं पर यमराज ने अपना भजन करना आरंभ किया और यमेश्वर तोता नाम का वहाँ पर जगह है, यमेश्वर नहीं यमराज जिसकी पूजा करते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन है, वहीं पर उन्होंने अपना भजन आरंभ किया। तो वो जगह का नाम है जगन्नाथपुरी क्षेत्र, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो ये एक प्रसंग हो गया, भगवान ने स्वयं, लक्ष्मी जी ने स्वयं अपने मुख से पुरुषोत्तम क्षेत्र का जो महात्म्य है वो यमराज को और ब्रह्मा जी को सुनाया। उसके बाद में एक बड़े सुंदर भक्त राजा का वर्णन आता है, उस राजा का नाम है इंद्रदुम्न, और वो राजा बहुत राजा होने पर भी बहुत बड़ा भक्त था, राज ऋषि इस रूप में उसको जानते थे। राजा होने पर भी उसको राज दरबार में काम करने से अधिक भगवान की भक्ति में रुचि थी। सैन्य लेकर दूसरे राज्यों को जीतने के बजाय उसको भगवान के भजन करने की ज़्यादा इच्छा थी, ऐसा महान राजा था वो। हमेशा अपने राज्य में शांति और प्रेम का अनुभव करता था, स्वयं भगवान का भक्त था और उसके राज्य में बहुत भगवान के भक्त थे, और नित्य नियमित रूप से वो अपने राज्य दरबार में संतों को बुलाकर भगवान के विषय में सुना करता था। तो एक दिन उसने वो सभा में बैठा हुआ था और बहुत लोग संत लोग बैठे हुए थे, तो वो संतों की सभा में बैठकर प्रश्न करता है कि मैं राजा हूँ, पूरे दुनिया का राजा हूँ, फिर भी मुझे भगवान को प्राप्त किए बिना मन में शांति नहीं प्राप्त हो रही है, क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे कि भगवान की प्राप्ति दर्शन मुझे कहाँ पर होगा? तो एक बूढ़ा ब्रह्मचारी साधु जो है वो उसको खड़ा होता है, वो कहता है कि मैंने मेरे पूरे जीवन में पूरा दुनिया जो है उस घूम चुका हूँ, मैं जितने दुनिया में जितने पवित्र क्षेत्र है सब जगह पर मैं घूम कर आया हूँ, लेकिन एक जगह ऐसी है जो मैंने देखी है उससे बढ़िया जगह मैंने आज तक कहीं देखी नहीं। तो राजा कहता है कौन सी जगह है वो? वो कहता है कि समुद्र के उत्तर दिशा में, महानदी के दक्षिण दिशा में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम का जो क्षेत्र है वहाँ पर नील माधव भगवान विराजमान है। फिर वही वर्णन करता है दोबारा कि उस जगह पर मैंने सुना है कि एक बार कौवा का जल में स्पर्श हो गया तो वो विष्णु दूत बनकर वैकुंठ चला गया। तो इतना सुंदर जगह पर मुझे एक साल रहने का मौका मिला और मैंने क्या देखा वहाँ पर? वहाँ पर हर रोज आकाश में से उतरते हुए ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वायु, ऐसे देवता लोग आकाश से आते हैं, अपने घर से, अपने धाम से, अपने लोगों से अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर लेके आते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को फूल अर्पण करते हैं अपने धाम से, और उनके सामने नाच कर भजन करते हैं, गीत गाते हैं और नाचते हैं उनके सामने। मैंने एक साल उस दिव्य जगह का रहते हुए ये दिव्य पूजन भजन जो था उसका सब आनंद लिया मैंने, और उस जगह पर बहुत दिव्य सुगंध आते रहता है, देवताओं के शरीर का, देवताओं के द्वारा लाए गए फूलों का और खाने के पदार्थों का, और वो प्रसाद भी मैंने ग्रहण किया है, और प्रसाद को ग्रहण करने से सभी अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। तो राजा तुरंत एकदम एक्साइट हो जाता है, बोले मुझे अब भी वहाँ पर जाना है, लेकिन जगह कहाँ पर है वो? तो अपने प्रधानमंत्री को बुलाता है, अभी कभी आदमी को भेजो और ये जगह कहाँ पर है खोज के निकालो। तो साधु के निर्देश पर चर्चा होती है कि किस तरफ जाना है, तो प्रधानमंत्री अपने भाई, उसका भाई का नाम है विद्यापति, वो ब्राह्मण रहता है, उसको कहता है कि आप जाओ और उस जगह को ढूंढ के आओ। हाँ, जब ब्राह्मण निकलता है बड़ी आशा से निकलता है, बड़ा भक्त रहता है भगवान का, स्वेच्छा से निकलता है, मैं जाऊंगा, और बहुत चलते 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 दूर दूर तक कभी खाने को मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी जंगल से जा रहा है, कभी नदी में से गुजर रहा है, कभी हवा का झोंका, कभी धूप, कभी बारिश, ये सब सहते हुए राजा की इच्छा के अनुसार और खुद के भक्ति की जो प्रेरणा है उसके अनुसार वो पहुंचता है आखिर में जहाँ पर ये पुरुषोत्तम स्थित रहे। और बहुत थका रहता है वो, लेकिन उसको नील माधव भगवान कहाँ उसका दर्शन नहीं होते, उसको पता नहीं, अभी तक पूछ रहा है वो। तो वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बहुत लोगों को बैठे हुए देखता है और वो सब लोग दिखाई पड़ते हैं कि वो गांव के हैं, बहुत शहर के नहीं हैं, बहुत सुंदर नहीं देखने के लिए, बहुत गांव जैसे लगते हैं और वहाँ पर रह के कुछ खा रहे हैं। तो इस ब्राह्मण को दूर से आते हुए देखते हो और बुलाते, आ जाओ आप कहाँ से आए हो। तो उसमें से जो प्रधान व्यक्ति होता है उनका चीफ, उसका नाम है विश्ववासु। तो विश्ववासु पूछता है, आइए आइए महाराज जी, आप भूखे होंगे, हमारे पास का भोजन प्राप्त कर लीजिए। तो भोजन प्राप्त करता है तो भोजन खाकर उसको लगता है कि अरे इनके पास में इतना कीमती भोजन कैसे आ सकता है, तो गाँव के लोग हैं, इतना भव्य प्रसाद, इतना भव्य भोजन पता नहीं इनके पास में कैसे आ सकता है। तो वो पूछता है कि आपके पास कैसे आया, आप तो गांव के लोग दिखते हो, इतना कीमती और इतना भव्य प्रसाद कैसे प्राप्त हुआ आपको। तो कहते हैं आप हमारे गांव के यात्री हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए आपको मैं ये रहस्य की बात बताता हूँ, सीक्रेट। सीक्रेट ये है कि ये भगवान नील माधव का महाप्रसाद है और रोज यहाँ पर देवता लोग आकर अपने घर से भोग लाते हैं, बड़ा दिव्य व्यंजन लाते हैं और नील माधव को यहाँ पर अर्पण करते हैं। और जब वो नाचते हैं, भजन करते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद वो भोग जो है वो प्रसाद के रूप में हम लाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं और फिर अपनी भी पूजा करते हैं भगवान की। लेकिन ये भोजन जो आपको आश्चर्य हो रहा है कि इतना भव्य भोजन कहाँ से आ रहा है, तो ये हमने नहीं लाया है, ये देवताओं के घर से आया हुआ है। तो वो तुरंत समझ जाता है कि मुझे जहाँ पहुँचना है वो जगह इनको पता है। तो वो कहता है कि मुझे ले चलो नील माधव के पास। तो क्यों जाना है आपको नील माधव के पास? तो विद्यापति कहता है कि राजा इंद्रदुम्न का मैं दूत हूँ, अवंतीपुर से आया हूँ और राजा ने बताया है कि मुझे बताओ कहाँ पर है नील माधव, उनको यहाँ पर आना है। तो वो कहता है हम आपको नहीं लेके जाएंगे वहाँ, क्योंकि हमने भी सुना है कि कोई राजा यहाँ पर आएगा तब भगवान हमारे से सेवा लेना छोड़ देंगे, इसलिए हम चाहते नहीं कि राजा यहाँ पर आए। अच्छा गांव है, हम लोग बेचारे गरीब लोग हैं, इस गांव में रहते हैं और हम ब्राह्मण भी नहीं हैं, शबर जाति के हैं, फिर भी हमारी सेवा इतने सालों से भगवान स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हमने सुना है बड़े लोगों से कि एक दिन यहाँ पर कोई राजा आएगा तब से तुम्हारी सेवा बंद हो जाएगी, तो हम नहीं चाहते कि हमारी सेवा बंद हो जाए, इसलिए उसको मना कर देते हैं। लेकिन ब्राह्मण का आदर करते हैं, उसको घर पे लेके जाते हैं, उनको स्नान वान करने को जगह देते हैं, भोजन करने को, आराम करने को जगह देते हैं, भोजन भी खिलाते हैं, वहाँ रहते हैं। और उस विश्ववासु ब्राह्मण जो होता है शबर, उसकी लड़की होती है, उसका नाम है ललिता। ललिता भी एक दिन कुएं से पानी भरते हुए उसको दिखाई पड़ती है। तो ललिता का दिल इस ब्राह्मण पे आ जाता है विद्यापति, और उसका विवाह हो जाता है। तो विवाह होने के बाद में वो ललिता पत्नी जो है उसकी पत्नी बन जाती है, उसको पूछता है कि आपके पिताजी को जरा मना लो, मैं जिस काम से आया हूँ अवंतीपुर से वो काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, आप कृपा करके अपने पिता को विनती करो कि मुझे वहाँ तक ले जाए। क्योंकि उसके पिताजी जो थे विश्ववासु, वो रोज़ रात को 9-10 बजे निकल जाते थे और रात भर बाहर रहते थे और सुबह जब दिन आता था, दिन उगता था, उसके बाद में वहाँ पहुँचते थे और उनके शरीर से बहुत दिव्य सुगंध आती थी और उनके हाथ में बड़े दिव्य व्यंजन भोजन हुआ करता था, बड़े अच्छे फूल हुआ करते थे, बहुत खुशबू वाले, जो कई मील तक उसकी खुशबू आती थी। तो पूछता है कहाँ जाते पिताजी तुम्हारे? तो कहता है मेरे पिताजी गुप्त रूप में रात में जाकर नील माधव की सेवा करते हैं और रात भर उनके वातावरण में रहते हैं, वहाँ पर देवताओं के द्वारा लाया हुआ फूल और व्यंजन रहते हैं और ये अपने व्यंजन लेके जाकर वहाँ पर सेवा करते हैं। उसमें लौट के आते तो उनके पूरे बदन को वो खुशबू आती रहती है। तो फिर उनकी इच्छा और तीव्र हो जाती है कि मुझे बताओ, पापा को बताओ कि मुझे भी ले चले वहाँ पर। तो लड़की जो है अपने पिताजी को विनती करती है, मेरे पति की बहुत इच्छा है, हम उनको ले चलो। तो नहीं बोलते, बहुत मनाती है, तो बोले मान जाती है। तो मैं एक कंडीशन है मेरी, मैं एक ही कंडीशन में उनको लेके जाऊंगा, उनकी आंखों को पट्टी बांधकर मैं गोल गोल घुमाकर उनको ले जाऊंगा, तो उनको पता नहीं चलेगा कि मैं कहां से कहां लेके जा रहा हूं। तो हाँ बोलते हैं कि आज रात को चलना है। तो पत्नी से कहता है कि अभी जाना है मुझे आज। तो पत्नी कहती है काम करो, तुम्हारे धोती में सरसों के दाने लेके जाओ, जब पापा मेरे पिताजी आपके आंखें बंद करेंगे और आपको पीछे से लेके जाएंगे हाथ पकड़ के, तो दूसरे हाथ से आप धोती से सरसों के दाने निकाल कर डालते जाना रास्ते पर। कुछ समय के बाद वर्षा होगी तो सरसों का खेत आएगा, पीले पीले फूल आएंगे, तो उसके बाद में अपने आप उस रास्ते जाकर वो जगह ढूंढ सकते हो। इस तरह से रात को फिर अंधेरे में आँखों में पट्टी बांधते, पहले हम लोग खेलते हैं ना जब लुका छुपी, तो आँख पट्टी बांधते पहले गोल गोल घुमा देते उसको, उसको पता चलता नहीं कौन सी दिशा कौन सा में कौन सी जगह पर है, तो वैसे गोल गोल घुमा कर फिर उसको लेके जाते हैं। तो एक हाथ धोती में डालता है और सरसों के दाने डालते 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 चला जाता है, ऊपर पर्वत पर चढ़ता है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आती है उसको, वहाँ पर जाकर उसकी पट्टी निकाल लेता है, तो उसके आँखों के सामने भगवान नील माधव का दर्शन होता है। तो विद्यापति तुरंत दंडवत प्रणाम करता है भगवान को, और बहुत देर वो वहाँ बैठते हैं, उधर रोहिणी कुंड है जहाँ पर वो कौवे का उद्धार हुआ था उसका दर्शन करते हैं, सुंदर कल्प वृक्ष है पेड़ उसका दर्शन करते हैं, और बहुत देर उस जगह का आनंद लेकर वहाँ पर विश्ववासु जो शबर है वो अपनी पूजा करता है रात भर, और सुबह जमाई को लेकर वापस लौट के आता है। जैसे लौट के आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं, मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मैं राजा के पास जाऊंगा, राजा इंद्रदुम्न के पास, उनको खबर दूंगा कि मैंने वो प्राप्त कर लिया है, वो जगह को देख चुका हूँ मैं। तो निकल जाता है, पत्नी से कहता है मैं आऊँगा लौट के, राजा को लेकर आऊँगा। राजा के पास पहुँचता है दोबारा, राजा इस खबर को सुनकर बहुत खुश होता है, वो आदेश निकालता है कि जितने भी लोग चाहते हैं अपना सामान पैक करो और मेरे साथ निकलो, हम पूरा राज्य अवंतीपुर जो है सब राज्य के वासी निकल जाएंगे यहाँ से और भगवान नील माधव का दर्शन करेंगे। अभी ऐसा कोई आदेश देगा तो हम निकलेंगे क्या? इसका घर है वहाँ पर, खेती है, उसका आमदनी का साधन है, बच्चे हैं, गुरुकुल है, सब कुछ है, लेकिन राजा इतना महान भक्त था और उस पर प्रजा की इतनी श्रद्धा थी कि राजा ने कहते तुरंत सब लोग अपना सामान पैक करके बच्चों को लेकर निकल पड़े राजा के पीछे। इसका मतलब सैन्य भी निकल गया है राजा के आदेश से, सब जनता भी निकल रही, मतलब पूरा अवंतीपुर राज्य जो है सारे वॉकिंग चलने लगे वो लोग। जब वो चलने लगे तो अचानक नारद मुनि आ गए वहाँ से, वो कहते कि मैं भी आपके संग चलूँगा। बोले ठीक है, अच्छी बात है, आप संत हैं, भगवान के दूत हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप जैसे संतों संतों का दर्शन और संतों का साथ हमारे इस मिशन में बहुत ज़रूरी है, अच्छा है, भगवान की कृपा है हमारे पर, चलो। चलने लगते हैं और बहुत देर चल के जब पहुँचते हैं तो सरसों के दाने जहाँ पर डाले हुए हैं तब तक उसके बड़े बड़े खेत बने होते हैं। उस मार्ग को लेकर जाते हैं तो आगे जाकर जंगल में देखते हैं कि वहाँ पर नील माधव की मूर्ति गायब हो चुकी है। पूछा क्या हुआ, इंक्वायरी करते हैं वहाँ पर, तो कहते हैं कि जिस दिन आप यहाँ पर आपके ससुर को लेकर आए थे और जब आप नीचे उतर के चले गए उस दिन बहुत बड़ा तूफान आया, इतना भयंकर तूफान आया कि सब पेड़ गिर पड़े और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, बहुत घनघोर वर्षा हो गई, बहुत ज़ोरदार आवाज़ हो गई, इतना भयंकर घटना हो गई, तूफान आया कि हम लोग पता नहीं क्या हो गया, ऐसे हम दुखी हो गए बहुत। और जब वो सब तूफान थम गया, शांत हो गया, तो हमने देखा तूफान में बहुत धूल थी, बहुत बारिश थी, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, सब अंधेरा था, लेकिन जब तूफान शांत होकर फिर उजाला हो गया तो देखा कि अपनी जगह से नील माधव की मूर्ति गायब हो चुकी थी। अभी आप देखो, ये अगर राजा को पहले पता होता राजा इतना दूर से वहाँ पर आता नहीं ना, तो नारद मुनि को पूछते हैं कि नारद मुनि जी आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, आपको सब मालूम होना चाहिए, मालूम होगा आपको क्योंकि आप सब जानते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप साधु हैं, आपको निश्चित रूप में पता होगा यहाँ पर नील माधव जी अदृश्य हो चुके हैं। वह कहते हाँ मैं जरूर जानता हूँ कि जिस दिन आप चले, आप निकले थे वहाँ से, जब विद्यापति ब्राह्मण वहाँ से निकला था उसी दिन भगवान यहाँ से अदृश्य हो गए थे। तो फिर राजा बेहोश हो गया तुरंत, बोले आपको पता था फिर भी आपने हमको बताया नहीं, हम यहाँ तक चले आए। बोले कि मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया था कि आपके संग जाना चाहिए, और ये भी बताया था रहस्य की बात। राजा को सांत्वना दे रहे हैं, राजा बहुत दुखी है, बेहोश होकर गिर पड़ा है। तो नारद मुनि उनको बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि नील माधव के अदृश्य होने के बाद बड़े दिव्य रूप में आप ही के हाथ से भगवान प्रकट होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ तक लेके आया, क्योंकि आगे की भविष्यवाणी ये थी कि राजा इंद्रदुम्न के हाथों से ही भगवान का दूसरा स्वरूप यहाँ पर प्रकट होने वाला है। और वो कहते हैं कि मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने बताया था कि मेरे 100 साल का जीवन होता है, उसके पहले 50 साल में भगवान नील माधव की पूजा पृथ्वी पर होगी, और जब मेरे 50 साल पूरे हो जाएंगे तो नील माधव अदृश्य हो जाएंगे और भगवान लकड़ी यानी दारू ब्रह्म के रूप में यहाँ पर राजा इंद्रदुम्न के हाथों से प्रकट होंगे, इसलिए मैं आपके साथ में आने का आदेश मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने दिया था, इसलिए मैंने आपका उत्साह नहीं जाना चाहिए, आप निरुत्साह नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया और आप सब लोगों को यहाँ तक लेके आया। फिर त्रिभुवनेश्वर जो भुवनेश्वर बीच में है ना, वहाँ तक वो जाते हैं और वहाँ पर शंकर का दर्शन करते हैं, फिर वहाँ पर कपोतेश्वर बिल्वेश्वर का दर्शन करते हैं, और वहाँ पर फिर राजा को नारद मुनि कहते हैं कि अभी आप नरसिंह भगवान के मंदिर में जाओ और वहाँ पर 100 यज्ञ की इंतज़ाम करो। तो राजा जो है, भगवान दोबारा आएंगे इस बात को सोचकर बड़ा खुश हो जाता है और बड़े उत्साह से एक पूरा शहर वापस आता है। हम लोग कैसा होता है, यज्ञ होता है एक तंबू लगाते हैं ना छोटा सा, उस समय में 100 लोग बैठते हैं और यज्ञ करते हैं हम लोग। राजा ने पूरा शहर बसाया, उसमें हजारों साधुओं के रहने का व्यवस्था टेम्पररी किया, हजारों साधुओं के लिए खाने का भोजनशाला बनाया, बहुत बड़ा यज्ञशाला बनाया, इसमें एक एक यज्ञशाला में हजारों कुंड होते हैं यज्ञ के, ऐसा भव्य शहर बनाकर, एक्चुअली वो यज्ञशाला ही थी खाली, बस बीच में यज्ञशाला, बाजू में रहने का इंतज़ाम, बाजू में भोजन का इंतज़ाम और बीच में यज्ञ की व्यवस्था, ऐसे करके 99 यज्ञ पूरे हो जाते नारद मुनि के उपस्थिति में, बड़े अच्छे संतों के उपस्थिति में बहुत दिव्य यज्ञ संपन्न हो जाते हैं। और 99 यज्ञ के बाद जब 100वां यज्ञ आरंभ होता है तो बीच में एक रात को राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न आता है, उसे भगवान विष्णु का दर्शन होता है। ऐसा दर्शन होता है कि भगवान नाग पर लेटे हुए हैं अनंत शेष पर और मुस्कुरा रहे हैं, उनको देखकर उनके चरणों को लक्ष्मी देवी दबा रही है और भगवान उनको देखकर केवल मुस्कुरा रहे हैं, और जब मुस्कुरा रहे हैं तो इतनी सुंदर खुशबू आ रही है कि स्वप्न में भी वो बहुत उसको रोमांच आते शरीर पर, आनंद के रोमांच आते। जब सुबह जगते हैं तो नारद मुनि का आपको बताते हैं कि नारद मुनि जी मुझे रात को कल भगवान ने दर्शन दिया, वो नाग पर लेटे हुए थे, लक्ष्मी देवी उनके चरणों को सेवा कर रहे थे और मुझे देखकर वो हंस रहे थे, बड़े प्रेम से मुस्कुरा रहे थे। तो फिर नारद मुनि ने कहा इस स्वप्न का मतलब यह है कि आपके यज्ञ जो है वो सफल होने वाले हैं और बड़ी ही जल्दी में भगवान आपको दर्शन देने वाले हैं। और उसके बाद में 100वां यज्ञ भी संपन्न हो जाता है, और 100वां यज्ञ संपन्न होने के पहले ही कुछ लोग जो अवंतीपुर से आए होते हैं वो समुद्र में स्नान करने जाते हैं। समुद्र में स्नान करने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि संध्या का समय था लेकिन दिन से भी अधिक प्रकाश था वहाँ पर उस दिन, और समुद्र में दूर तक उनको एक बड़ी लकड़ी दिखाई पड़ रही थी, जोरदार बड़ी पहाड़ की तरह, और उस लकड़ी में से बहुत खुशबू समुद्र किनारे में आ रही थी, लकड़ी समुद्र के अंदर थी। लकड़ी को संस्कृत में दारू ब्रह्म कहते हैं। वो दारू ब्रह्म को वो ने गौर से देखा तो उसमें विष्णु के चिन्ह थे, और वो सब लोग भाग के राजा के यज्ञशाला में आए। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं समुद्र में आ चुके हैं। तो नारद मुनि की ओर देखते हैं राजा आश्चर्य से, ये क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु का एक बाल जो है वो उन्होंने भेज दिया है लकड़ी के रूप में, वो समुद्र में प्रकट हो गया है। तो सब लोग यज्ञ पूर्ण करके पूरे सेना और जनता और ऋषि मुनि और सब लोग हाथी घोड़ों को लेकर निकलते हैं, रथ को लेकर निकलते हैं और समुद्र किनारे पहुंचकर स्वयं अपने आंखों से उस दिव्य लकड़ी का दर्शन करते हैं। अनंत प्रकाश, आकाश से फूल बरस रहे हैं, सुगंधित द्रव्य तरस रहे हैं आकाश से, और आकाश में देवता लोग वाद्य बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, सब दिखाई पड़ रहा है। तो फिर हाथी और घोड़ों को लेकर रथ जो है वो अंदर घुसाकर उस दिव्य लकड़ी को उठाकर रथ में डालते हैं और एक जगह पर लेके आते हैं, इसका नाम है महावेदी, और महावेदी पर रखते हैं। आकाशवाणी होती है तुरंत कि इस लकड़ी से तीन मूर्ति बनाई जाए, एक जगन्नाथ भगवान की सांवले रंग की, एक बलदेव भगवान की गोरे रंग की, और एक सुभद्रा देवी की पीले रंग की। तो राजा बहुत खुश होता है आकाशवाणी सुनकर, लेकिन राजा को प्रश्न आता है कि अभी कौन बनाएगा इसको, इतनी दिव्य लकड़ी है ये, इतनी से प्रकाश और खुशबू निकल रही है, इसको बनाने वाला कारपेंटर कौन है। तो फिर आकाशवाणी होती है, वो कहती है जल्द ही एक कारपेंटर यानी सुतार आएगा आपके पास और इन मूर्तियों को बनाएगा। उसकी एक कंडीशन होगी कि जब वो मूर्ति बनाएगा तब एकांत में उसको छोड़ना चाहिए, कोई व्यक्ति उसको देखता नहीं चाहिए मूर्ति बनाते समय, उसको एकांत जगह बनाना चाहिए, और एकांत जगह के बाद में चारों तरफ वाद्य बजने चाहिए कि मूर्ति बनाने का जो आवाज़ है ना, ठोकने का, जो भी करने, घिसने का, काटने का, जो भी कुछ आवाज़ आता है ना लकड़ी का, वो आवाज़ उस मंडप से कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए चारों ओर वाद्य बजाने वाले लोग बैठने चाहिए ताकि उनके वाद्य की आवाज़ में वो अंदर की आवाज़ बाहर नहीं आ सकती है। और जब तक वो बनाएगा तब तक कोई अंदर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब जो बनाकर जब बाहर निकलेगा तब आपको अंदर जाने का, प्रवेश करने का मौका मिलेगा, ऐसे आकाशवाणी होती है। राजा बोलता ठीक है, अच्छी बात है। तो कुछ ही देर में एक बूढ़ा दाढ़ी वाला व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं मूर्ति को बनाना चाहता हूँ। तो राजा ने आकाशवाणी सुन लिया ना पहले से भगवान का, राजा कुछ बोलता नहीं, तुरंत उसकी व्यवस्था कर देता है। वो बूढ़ा जो व्यक्ति है वो कहता है कि अगर तुमने मेरी मूर्ति बनाने के समय अंदर आने का, प्रवेश करने का प्रयास किया तो जिस अवस्था में मूर्ति बनी हुई है वैसे ही छोड़कर मैं चला जाऊँगा, आधी बनी है, पौना बना है या थोड़ा बहुत बना है, जो भी कुछ बचा है वो सब छोड़ के चला जाऊँगा। मैं जब मूर्ति पूरी बनाऊँगा तभी तुमको अंदर आने का प्रवेश है, तब तक मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, चारों ओर बंद होना चाहिए और सब वाद्य बजाने चाहिए, मैं अकेले अंदर जाकर अपना काम करूँगा और जब मूर्ति तैयार होगी तो खुद बाहर आऊँगा, मुझे अंदर आके पूछने की, देखने की, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत आराम से बनाऊँ, सबकी व्यवस्था करता है। और सुतार जो है, सोमैया प्रजापति सुतार जो है वो बनाना आरम्भ करता है। एक दिन जाता है, दो दिन जाते हैं, तीन दिन जाते हैं, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 15 दिन जाते हैं, अंदर से कोई आवाज़ तो आने ही नहीं है क्योंकि बाहर से वाद्य बज रहे हैं, तो पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। तो उत्सुकता बढ़ती है, तो राजा की जो पत्नी है उसका नाम है गुंडीचा, हाँ, वो रोज़ उसको बोलता है कि मैं आज भी गया था वहाँ पर, वाद्य बज रहे हैं और अंदर सब बंद है, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो रानी कहती है कि अरे आपने उस बूढ़े सुतार को भोजन की व्यवस्था किया क्या, अंदर तो गया वो लेकिन भोजन नहीं दिया आपने, तो शायद मर गया होगा अंदर, वो बूढ़ा आदमी था, भोजन के बिना काम करने को लगाया उसको, हम आप राजा हैं, आपका कर्तव्य है उसको देखने के लिए, आपने तो सोचा ही नहीं, उसका हाँ करके भेज दिया उसको। तो राजा को और टेंशन आता है, अरे हाँ मैं तो ये बात भूल ही गया। तो रोज राजा आकर वहाँ राउंड लेता है, लेकिन मन में शंका है ना उसके कि मैं अंदर जाऊँगा तो वो छोड़ के चला जाएगा, उसने बोल दिया मुझे, और ये भी मन में टेंशन है कि अरे खाना नहीं खाया मैंने, कुछ भोजन दिया ही नहीं, अंदर कोई गया नहीं खाना लेके, तो कैसे भूखा रहेगा आदमी, जीवित रहेगा मृत रहेगा, बूढ़ा था बहुत, ये चिंता में रोज अप डाउन कर रहे हो और रोज चिंता उसकी बढ़ रही है। 13 दिन हो गए, 14 हो गए, 15 हो गए, 15वें दिन में उसको बहुत टेंशन आता है, बोला कि अरे बूढ़ा निश्चित रूप में मर गया होगा, तो चिंता से वो अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही प्रवेश करता है देखता है कि मूर्ति जो है आधी बनी हुई पड़ी है और अंदर कोई नहीं है, किधर भी कोई भी नहीं है, क्योंकि जैसे बूढ़े उसने कहा था कि आप अंदर आओगे तो मैं चला जाऊंगा, तो राजा को बड़ा दुख होता है, अरे मैंने उसके बात पर विश्वास नहीं किया, भगवान ने भी कहा था मतलब आकाशवाणी से कि उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, फिर भी मैं घुस गया, कितना दुर्भाग्य हूँ मैं, एक तो मेरे सेवक को मतलब विद्यापति ब्राह्मण को दर्शन हुआ नीलमाधव का, और मैं आया तो भगवान गायब हो गए थे। तब भी उसके मन में प्रश्न आया था कि अरे विद्यापति ने ऐसा कोई सा अधिक पुण्य किया था जिससे दर्शन उसको हुए मुझे नहीं हुए, उस समय बेहोश होकर गिर गया था वो, कितना दूर से आने पर दर्शन नहीं हुआ, तो एक दुर्भाग्य हो गया। सेकेंड, मैंने 100 यज्ञ किए, फिर समुद्र में भगवान आए जैसे उनकी इच्छा थी, अभी भगवान के दर्शन होने वाले थे तो मैंने गुस्ताखी कर ली, विश्वास न रखते हुए अंदर प्रवेश किया, अब भगवान की मूर्ति आधी रहेगी उसको कौन पूरा करेगा, फिर वो राजा बेहोश हो गया। फिर नारद मुनि आए वहाँ पर, राजा को जगाया उन्होंने, पानी दिया उसको, मंत्र बोले उसके कान में, फिर जग गए वो। राजा बहुत रोया कि मैं इतना दुर्भाग्य हूँ, मुझे भगवान के दर्शन होते 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 उधर रुक जाते, क्या मेरा दुर्भाग्य समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ। तो उसको दोबारा आकाशवाणी हुई नारद मुनि की उपस्थिति में, और भगवान ने कहा कि मुझे इसी अवस्था में प्रकट होना था, आपको लग रहा है कि मूर्ति अधूरी है लेकिन वो मूर्ति पूरी हो गई है, तो वो मूर्ति आपके सामने है, लगता है अधूरी है ना, पैर तो बने नहीं गए उसके, हाथ का पंजा तो बनाया नहीं, उंगली तो है नहीं, काम बाकी है उसके अंदर, ऐसा लगता है ना आपको, लेकिन भगवान ने कहा कि ये ही पूरी मूर्ति का स्वरूप है। और भगवान की आवाज़ जो आकाशवाणी बंद हो जाती है, तो नारद मुनि फ्लैशबैक कहानी बताते हैं राजा इंद्रद्युम्न को कि ये मूर्ति पूरी कैसी, इसका रहस्य क्या है, लगती तो अधूरी है लेकिन भगवान ने स्वयं कहा कि ये पूरी हो गई मूर्ति है, संपूर्ण हो गई मूर्ति है, का रहस्य क्या है। तो नारद मुनि राजा इंद्रद्युम्न को कहानी बताते हैं, मैं आपको कहानी वो संक्षेप में बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी है, एकदम छोटे में बताऊंगा आपको। जब भगवान द्वारका में गए तो उनकी रानियां सब व्याकुल रहा करती थी, क्योंकि रोहिणी माता उनके बीच में थी और देवकी भी थी, और रोहिणी माता ऐसी अकेली थी जो द्वारका में भी थी, मथुरा में भी थी और भगवान के साथ वृंदावन में भी थी, तो सब लोग रोहिणी के मुख से भगवान की वृंदावन की लीला सुनने में आतुर रहते थे कि रोहिणी जी आपने अपने आंखों से देखा है, हमने केवल सुना है, आप अपने अपने मुंह से हमको बताओ कि आपने क्या क्या देखा भगवान के बचपन में क्या क्या हुआ। तो कहते कि मैं अगर कहानी सुनाऊंगी बचपन की भगवान की, कृष्ण बलराम की, तो वो तुरंत प्रकट हो जाएंगे जहां पर कथा हो रही है और तुरंत रथ में बैठकर वृंदावन चले जाएंगे आपको छोड़कर, आपको मंजूर है क्या। नहीं नहीं नहीं, बोले मत कराओ, कोई बात नहीं, हमको हमारे पति अम्मा साथ चाहिए। लोग एक बार गए निकल के वृंदावन, वापस लौट के नहीं आएंगे, वो इतना उनको अटैचमेंट है, इतना आसक्ति है कि वहां से लौट के नहीं आएंगे। लेकिन एक दिन सब रानियां जो है इतना आतुर हो जाती है कि हमको सुनना ही सुनना है, हम लोग भगवान के आने का नहीं आए सर बंदोबस्त कर देंगे। बोले क्या करेंगे आप, बोले बंद कमरे में सब बैठ जाएंगे हम लोग, दरवाजे पर सुभद्रा को खड़े करेंगे और दूर से जब भी दूर से दिखाई पड़ेंगे आ रहे हैं तो वो दरवाज़ा खटखटाएगी, आ रहे आ रहे आ रहे, तब लोग सब लोग भाग जाएंगे, तो कुछ भी नहीं होगा ऐसा दिखाएंगे, तो ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भगवान को आना, वो आएंगे अपनी कथा सुनेंगे, उनको वृंदावन जाने का मोह होगा, रथ में बैठकर वृंदावन चले जाएंगे, ये सब होगा ही नहीं, क्योंकि आने के पहले से ही हम उनको वहीं पर रोक देंगे, दरवाज़ा खटखटा के हम लोग तुरंत भाग जाएंगे। ऐसे करके दरवाज़ा बंद कर सब लोग बैठ जाते हैं, दरवाजे पर सुभद्रा को रखते हैं, सुभद्रा तुम्हारा काम है दूर से भी दिखाई दिया ना भगवान कृष्ण बलराम तो हमको खबर करना है आपको, और निश्चिंत होकर अंदर बैठ जाते हैं और रोहिणी को बिठाते हैं, देवकी को बिठाते हैं, रुक्मिणी सत्यभामा सब पत्नियां 16108 सब बैठ जाते हैं वहाँ पर, और रोहिणी देवी कथा बनाना आरंभ करती है। वो इतनी कथा सुंदर होती है, इतनी मधुर होती है, इतनी मधुर होती है, भगवान के बाल लीला की, जन्म की कथा उनकी, और वृंदावन की कथा, राक्षसों को मारने की कथा, मक्खन चोरी कर रहे हैं, सभी गोपियों के साथ नाच कर रहे हैं, जमुना जी में कूद रहे हैं, सब कहानी बताना आरंभ करती है वो। और सुभद्रा देवी कान लगाकर सुन रही है, दरवाजा बंद है लेकिन कान लगाकर कथा सुन रही है। कथा थोड़ी सी होने पर भी कुछ ही देर बाद सुभद्रा कथा सुनकर आनंद से बेहोश होकर गिर जाती, बड़ी बड़ी आंखें ऐसी करके, बड़ी खुशी की मुस्कान, हाथ पांव अंदर घुस गए शरीर के आनंद के कारण, ऐसी अवस्था में वो गिर जाती है। और श्योरली 100% वहाँ कृष्ण बलराम आ जाते हैं, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भगवान तुरंत आ जाते हैं। इसलिए आपको कथा में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। भगवान देखते हैं, अरे सब दरवाजे बंद, ये भी दरवाजा बंद, उसके सामने हमारी प्रिय बहन सुभद्रा जो है बड़ी विचित्र अवस्था में गिरकर बेहोश हो गई है, हाथ और पांव शरीर के अंदर घुस गए, एक शरीर थैला बन गया, थैला, हाथ और पांव अंदर घुस गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी मुस्कान, और बेहोश गिर गई है, बड़ी खुली आंखें, हंस रही है और बेहोश अवस्था में, क्या है, क्या रहस्य उसका। इसलिए दोनों बाजू में जाकर भैया खड़े हो जाते हैं और दरवाजे में कान लगाते हैं, और वो भी अपनी बचपन की कहानी सुनना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि अंदर रोहिणी माता जो है बड़े प्रेम से भगवान के सभी रानियों को भगवान कृष्ण बलराम के बचपन की कहानी सुना रहे हैं, कि कान लगा के सुनते हैं दोनों भैया। और उनकी भी वैसे ही अवस्था होती है, उनका भी शरीर जो है बड़ा छोटा होने लगता है, हाथ और पांव ऐसे शरीर के बाहर आने लगते हैं, आंखें बड़ी बड़ी होती है, बड़ी बड़ी मुस्कान से खुशी से वो हंसने लगते हैं, पैर अंदर घुसते शरीर के, हाथ बाहर निकलते हैं, हाथ अंदर घुसते हैं, पैर बाहर निकलते हैं, और एक ऐसी अवस्था होती है जिसको कहते हैं महाभाव। वो महाभाव में उनको अति 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 आनंद होता है, उसमें उस अवस्था में आने तक उनके शरीर में कई बदल होते हैं, उनकी आंखें बड़ी होती है, छोटी होती है, आंखों से आंसू आते हैं, वो कंपन होता है शरीर के अंदर, गला भी उनका गदगद होता है, शरीर के बाहर बहुत लंबे पैर निकलते हैं, फिर अंदर घुस जाते हैं, फिर हाथ निकलते हैं, फिर हाथ अंदर आ जाते हैं, ऐसे उनके शरीर में कथा सुनते वक्त कई प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं, और एंड में जब उनको अति आनंद होता है उसको कहते हैं महाभाव, उसमें दोनों भैया सुभद्रा देवी के दोनों तरफ बेहोश होकर गिर जाते हैं। और तब वहाँ पर आकाश से नारद मुनि गुजरते रहते हैं, नारायण नारायण करते करते देखते तो अरे भगवान कृष्ण बलराम सुभद्रा उनकी बहन ऐसे विचित्र अवस्था में गिरे हुए हैं, तो उनको आश्चर्य होता है, अरे ऐसा कैसे हो गया, ये अनोखा दृश्य मैंने कभी देखा नहीं, उनका दर्शन मैंने कई बार किया है पहले लेकिन ये दर्शन कभी नहीं हुआ है, पहली बार देख रहा हूँ। नारद मुनि नीचे उतरते हैं और जब गौर से इनको देखते हैं कि बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मुस्कान, हंस रहे हैं, हाथ पैर उनके सुभद्रा जी के है ही नहीं, इनके पैर गायब है, उनके दोनों गायब है, फैले हुए हाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बलदेव बलदेव के, उनके हृदय में ये अद्भुत दृश्य देखते हुए बड़ी खुशी होती है उनको, ऐसा प्रेम लगता है भगवान के प्रति जो पहले भी उनको कभी अनुभव नहीं हुआ था। उनको लगता था कि मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम तो है लेकिन आज जो प्रेम मुझे अनुभव हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ था, तो बड़े आनंद से वो फूले नहीं समाते। फिर कुछ देर बाद भगवान को स्पर्श करते हैं, जैसे भगवान को स्पर्श करते हैं कृष्ण बलराम सुभद्रा अपने पुराने शरीर में आ जाते हैं वापस, उनके पैर बाहर निकलते हैं और नॉर्मल रूप में आ जाते हैं, पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। तब नारद मुनि कहते हैं कि आपका ये स्वरूप देखकर मेरे मन में इतना प्रेम उत्पन्न हुआ कि मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि आप इसी रूप में पृथ्वी पर जन्म ले लो, इसी रूप में सबको दर्शन दे दो, ताकि जो प्रेम का अनुभव मैंने किया है अनोखे प्रेम का, वो प्रेम सबके मन में पैदा हो। भगवान कहते तथास्तु। तो नारद मुनि ये खुद की कथा जो है राजा इंद्रद्युम्न को सुना रहे हैं कि चिंता मत करना, दुखी मत होना, ये इसके पीछे का बैकग्राउंड है, ये कहानी सब मेरे सामने हुई है, पर मैं जानता हूँ भगवान कौन से रूप में थे, और आज आपको जो आदि मूर्तियां लग रही है इसी रूप में भगवान वहां पर उपस्थित थे, इसका दर्शन मैंने किया था, इस इसलिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है। यही भगवान का अंतिम स्वरूप है। जिस रूप में भगवान कलयुग में पृथ्वी पर अवतार लेने की इच्छा रखते हैं, इसलिए वो इस रूप में अवतार हो गया है। और जो सुतार आया था वो कोई साधारण जीव नहीं था, वो देवताओं का मूर्तिकार, क्या नाम था उसका, यस विश्वकर्मा, जो देवताओं का मूर्तिकार है। वो केवल मूर्ति नहीं बनाता है, वो शहर भी बनाता है, राजमहल भी बनाता है, मतलब आर्किटेक्ट है वो। उसी आर्किटेक्ट के हाथ से ये मूर्ति बनी है। और जैसे उसने कहा था कि जैसे आप अंदर आओगे चला जाओगा, उसके पहले उसकी मूर्ति बनाकर उसने रेडी रखी थी। अभी उसको पेंट करना है आपको, जैसे भगवान ने कहा था वैसे आपको कृष्ण को काला रंग, बलदेव को गोरा रंग और सुभद्रा जी को पीला रंग देना है। तो अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं, उनको पेंट करते हैं। फिर नारद मुनि को राजा इंद्रदमन कहते हैं कि अभी भगवान तो अवतरित हो गए हैं, अभी उनके लिए मंदिर होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, मंदिर बना दो। जहाँ पर नील माधव रहा करते थे नीलाचल पर्वत पर, वहीं पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो राजा की पूरी सामग्री, धन धन सब कुछ जो है लगा देता है और नीलाचल पर्वत पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम उसका वर्णन किया था ना, अद्भुत मंदिर का वर्णन किया था ना, कि उस मंदिर के अंदर समुद्र के किनारे होने पर भी समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं आती है, पूरा बंद होने पर भी अंदर हवा खेलती रहती है। उस मंदिर का छाया जो है, शिखर का छाया जमीन पर नहीं गिरता है, उसमें हवा ऐसी बहती है तो झंडा ऐसे फैलता है। वहाँ पर कोई पक्षी मंदिर के ऊपर क्रॉस करके उल्टा जगह जाता नहीं है, जा सकता नहीं है, गोल घूम के जाता है, ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता है। ऐसा दिव्य मंदिर था वो। राजा इंद्रदुम्न ने उसको पूरा तरह से पत्थर में बनाया, बहुत दिव्यता से। उसका 90% जो स्ट्रक्चर है वो पर्वत के अंदर था, 10% स्ट्रक्चर जो है वो पर्वत के ऊपर दिखाई पड़ता है, जो आज हम भी देख रहे हैं वो खल 10% है, उसका 90% हिस्सा जो है वो जमीन के अंदर है, पर्वत के अंदर। मंदिर निर्माण होने के बाद में राजा बोले कि इस मंदिर का निर्माण जो है, स्थापना जो है, ब्रह्मा जी के हाथ से होना चाहिए। बोला अच्छी बात है, चलो। तो इंद्रदुम्न को लेकर नारद मुनि ब्रह्मा लोक में जाते हैं। जब ब्रह्मा लोक पहुँचते हैं, अभी हम लोग आपको एकदम फास्ट बता रहे हैं कहानी, एकदम फास्ट स्पीड बता रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा लोक को पहुँचते पहुँचते कई युग बीतते हैं। हमारे कुछ मिनटों में हम लोग कथा में पहुँच गए वहाँ पर। तो जब कथा वहाँ पर पहुँचते ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी अपने रूम के अंदर भगवान के लिए भजन गाने में बिजी रहते हैं। तो कुछ मिनट जाते हैं उसके अंदर, मतलब क्या होता है, यहाँ के कई युग बीतते हैं उस मिनट के अंदर। बाहर के पहरेदार बोलते हैं कि महाराज जी आप रुकिए, हमारे ब्रह्मदेव भगवान के लिए भजन गा रहे हैं, उनका भजन का समय है। तो कुछ मिनट के बाद उनका भजन समाप्त होता है और उनको अंदर बुलाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, बोलते हैं महाराज जी नारद मुनि की साथ में मैं आया हूँ, मेरे आपको विनती है कि आप साक्षात भगवान के अनारोस पुत्र हो, आपके हाथ से भगवान की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। उस समय वहाँ पर दुर्वासा मुनि आते हैं और कहते हैं कि आपके दरवाजे पर बहुत सारे देवता लोग आकर वेट कर रहे हैं और आप बहुत देर से इनके साथ मीटिंग कर रहे हो, ज़रा बाहर के लोगों को भी दर्शन दे दो। तो दुर्वासा जी को ब्रह्मा जी कहते हैं कि बाहर जो लोग आए ना, वो मुझसे कुछ प्राप्त करने के लिए अच्छा से आए हुए हैं, और राजा जो इंद्रदम्न में अंदर बैठा हुआ है ये भगवान का शुद्ध भक्त है, ये कुछ मांगने के लिए नहीं आया है, ये भगवान का सेवक है, वो कुछ कुछ प्राप्त करने के लिए इच्छा से आए हैं, इसलिए उनको वेट करने दो, प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम पूरा करूँगा इनसे पहले। वादा करते हैं, फिर कुछ देर बाद सब देवताओं को आने के लिए परमिशन देते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और ब्रह्मा जी निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि राजा तुम चले जाओ आगे, मैं तुरंत निकल रहा हूँ आपके पीछे पीछे, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, जब नीचे पहुँचोगे ना तो हजारों युग बीत गए होंगे, आपके परिवार, आपकी पीढ़ियाँ, कई पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ बदल गई होंगी, ये ध्यान रखना बात को। आपको लगा कि आप गए और आए, लेकिन उसमें 71 कल्प जो है वो ख़त्म हो गए, बहुत लंबा समय होता है। मनु बदली हो गए, जो अधिकारी होते हैं ना मनु, वो बदली हो गए। तो राजा नीचे पहुँचते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर एक और एक राजा है जिसका राज्य चल रहा है, उसका नाम है गाला, राजा गाला। तो राजा इधर उधर पहुँचते हैं और पूरी तैयारी करते हैं, जो मंदिर बनाया उन्होंने उसका कब्जा किसी और ने कर लिया ना, अभी इतने युग बीत गए तो कोई नहीं कब्जा कर लिया राजा ने उसने। उसी मंदिर में खबर पहुंचती है राजा को, राजा गाला को, कि आपके वो बड़े मंदिर में कोई राजा आकर मंदिरों की मूर्ति की स्थापना कर रहा है। महावेदी में जो मूर्ति रखी हुई है जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा की, उसको निकाल कर वहाँ से मंदिर में स्थापना करने का प्लानिंग किया जा रहा है, और हमने सुना है कि ब्रह्मा जी भी आ रहे हैं। राजा को सब झूठ लगता है, क्या ब्रह्मा जी क्या बात कर रहे तुम लोग, कौन है वो, उस पर मैं हमला करूँगा, आक्रमण करूँगा उसके ऊपर। वो सैन्य लेकर वो मंदिर में आक्रमण करता है, लेकिन जब देखता है कि उसके लिए ही, राजा के लिए एक आसन बनाया गया है, बैठने की जगह बनाई गई है, और पूरी कहानी सुनता है वहाँ पर, वहाँ बैठकर कि कैसे ये राजा इंद्रदुम्न आए थे और कैसे कितने युगों के पहले, सब कहानी सुनते हैं। ब्रह्मा जी के पास लेकर, ब्रह्मा जी अभी आने वाले हैं, और आकाश में देखते तो ब्रह्मा जी का जो स्वान है ना राजहंस, वो उतरता हुआ नजर आता है। वो देखकर इसको पश्चाताप होता है कि इतना महान ऋषि राजा ब्रह्मा लोक तक पहुंच गया, वो उसको मिलकर उनको बुलाया और वो आ रहे हैं नीचे। दंडवत प्रणाम करता है राजा इंद्रदुम्न को, कहते हैं हमें माफ कर देना, हमने आपको पहचाना नहीं, हम तो अपनी छोटी अकल में ही आपका विचार कर रहे थे, अब हम समझ गए कि हम आपके ही वंशज हैं, आप हमारे पूर्वज हैं, आपके वंश में हमारा जन्म हो गया है, हम आपको सहायता करेंगे। और फिर ब्रह्मा जी राजहंस पर नीचे आते हैं, कमल पर बैठे हुए, और नीचे आकर पूरा जो समारंभ है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का स्थापना करने का, वो संपन्न होता है। और सबसे पहले क्या होता है, मैंने बताया था आपको, भगवान स्वयं उस समय ब्रह्मा जी को और राजा इंद्रदुम्न को बताते हैं कि इस रूप में जब हमारा उद्घाटन होगा, प्रतिष्ठापना होगी, तो सबसे पहले जनता में बिठाकर हमारा स्नान कराना होगा, और 108 हमारे मंदिर में, हमारे मंदिर के जगह पर कुआं खोद कर वहाँ का जल लाना होगा, और 108 सोने के कलश में जल लाकर पब्लिक में हमारा अभिषेक करना चाहिए। तो कुआं खोदते हैं, वहाँ जल निकालकर 108 सोने के कलश में भरकर पब्लिक में जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा जी के मंदिर की अभिषेक होता है, स्नान यात्रा। और उसके बाद में की कहानी आपको मैंने बताई है कि भगवान को सर्दी होती है, फिर बुखार आता है, फिर भगवान अंदर कमरे में आराम करते हैं, फिर रथ यात्रा शुरू होती है। तो इस तरह से ये कहानी भगवान के, जगन्नाथ के पृथ्वी पर कैसे उनका अवतार हुआ, उसकी ये कहानी अभी संपन्न हुई। पहले नीलमाधव के रूप में थे, लेकिन उसके बाद में ब्रह्मा जी के 50 साल के आगे के 50 साल के आयुष्य में भगवान लकड़ी दारू ब्रह्म के रूप में, दिव्य लकड़ी के रूप में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट हुए हैं। हरे कृष्णा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। इस पूरी कथा में हम देख सकते हैं कि राजा इंद्रदुम्न इतने बड़े राजा होने पर भी कितने अच्छे भक्त थे भगवान के, उनके पास ऐश्वर्य था, संपत्ति थी, लेकिन फिर भी भगवान के वो श्रेष्ठ भक्त थे। इतने भक्त थे कि उनको भगवान ने बार बार दर्शन दिया, स्वप्न में आए, आकाशवाणी से उनसे बोले, उनको ब्रह्मा लोक तक प्रवेश दिया, ब्रह्मा के हाथ से दर्शन देते हुए नारद मुनि के संग में भगवान ने उनके आंखों के सामने प्रकट हो गए। पहले लकड़ी के रूप में समुद्र में दर्शन दिया, फिर उसकी मूर्ति बनवाई गई, और फिर आकाशवाणी बोली उनके साथ में भगवान का आवाज़। तो राजा इंद्रदुम्न जो है बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। उनकी पत्नी जो है गुंडीचा, उसने भी अपना महल बनाया था जगन्नाथपुरी में, जहाँ पर मंदिर बनाया पर्वत के ऊपर, उसको 10 किलोमीटर आगे आज भी गुंडीचा का मंदिर है, उसका महल था। उस महल को वृंदावन माना गया है, गुप्त वृंदावन। और भगवान रथ यात्रा में उस पर्वत से निकलते हैं और गुंडीचा के महल तक जाते हैं, और उसके पहले गुंडीचा मंदिर का मार्जन होता है। जिस दिन हमने यहाँ पर हॉस्पिटल साफ किया ना, उसी दिन गुंडीचा मार्जन का पवित्र दिन था, जिस दिन गुंडीचा मर्दन मंदिर भी वहाँ पर साफ किया गया भगवान के आने के उपलक्ष्य में, कि भगवान आएंगे। तो पति और पत्नी दोनों ही भगवान के अच्छे भक्त थे। और उसी गुंडीचा मंदिर के पास में एक सरोवर है, राजा का खुद का स्नान करने का सरोवर, इंद्रदुम्न सरोवर उसका नाम है। और उस इंद्रधनु सरोवर में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आकर स्वयं स्नान किया था अपने सारे भक्तों के साथ में, जिसमें उस समय राजा इंद्रदुम्न स्नान किया करते थे। उस पवित्र जल के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने आज से 500 साल पहले, 525 साल पहले अपने सारे भक्तों को लेकर उस इंद्रदुम्न सरोवर में स्नान किया था और बहुत आनंद लिया था। बहुत पवित्र जगह है वो, गुंडीचा मंदिर के पास। नरसिंह मंदिर भी वहीं पर है जहाँ पर राजा ने 100 यज्ञ संपन्न किए ना, वो नरसिंह देव का मंदिर भी उसी मंदिर के पास में है। वहीं पर भगवान ने आने का संकेत दिया था कि मैं आ रहा हूँ, उसके पहले स्वप्न दिया था, उसके बाद में समुद्र में प्रकट हुए थे। ये सब जगह आज भी है, ये मत समझना कि इतनी सत्ययुग के पुराने समय की बात हम कर रहे हैं तो सुनने को कथा अच्छी है लेकिन पता नहीं सच्ची है कि नहीं। तो आज भी ये सब जगह है और आप लोग अगर 2015 साल में यात्रा में आने को तैयार है तो आप सब लोगों को ये जगह हम दिखाएंगे कि कहाँ पर मंदिर बनवाया गया, समुद्र कहाँ पर है, मंदिर कहाँ पर है, गुंडीचा मंदिर कहाँ है, नरसिंह मंदिर कहाँ है, रथ यात्रा कौन से रास्ते पर होती है, भगवान का मूर्ति कहाँ बनता है, रथ कहाँ बनता है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और 2015 साल में रामनवमी से भगवान के शरीर को बदलने का भी कार्यक्रम आरंभ होगा। ये जगन्नाथ भगवान एक ऐसे अनोखे भगवान है जो हर कुछ साल के बाद में अपना शरीर बदली कर देते हैं, बॉडी चेंज करते हैं। उसकी एक लंबी कहानी आपको मैं अगले प्रवचन में बताऊंगा, लेकिन समझना इतना ज़रूरी है कि हर कुछ साल के अंदर जिस साल में आषाढ़ महीना अधिक मास के रूप में आता है, इस साल में भाद्रपद अधिक मास के रूप में आ रहा है, 18 अगस्त को अधिक मास आरंभ होगा लेकिन वो भाद्रपद का होगा। लेकिन जिस साल आषाढ़ महीना अधिक मास के रूप में आएगा उस साल में भगवान जगन्नाथ का नव कलेवर बनता है। जब कभी भी आता है उस साल में उनका शरीर बदलता है, नए शरीर में प्रवेश करते हैं, पुराना शरीर को दफना देते हैं, मंदिर के प्रांगण में जमीन में उनको दफना देते हैं। तो ये जो नवीन शरीर बनने का विधि है वो अभी 2015 साल में होने वाला है, क्योंकि 2015 में आषाढ़ अधिक मास आने वाला है। तो हमारे हॉस्पिटल की तरफ से भव्य यात्रा निकलेगी उस समय जगन्नाथपुरी में और सब जगह आपको दर्शन करने लेके जाएंगे और भगवान का नया जो शरीर है उसका भी दर्शन आपको होगा उस साल में। हर साल में जगन्नाथ रथ यात्रा में 10 लाख लोग पहुंचते हैं, लेकिन जिस साल में भगवान का नवीन शरीर बनता है उस साल में 25 लाख वहाँ लोग पहुंचते हैं, अपने ही बिना बुलाए पहुंच जाते हैं भगवान का नया शरीर का दर्शन करने के लिए। सो कहते हैं नव कलेवरम, वो नव कलेवरम 2015 में होने वाला है। आप सबको उस यात्रा में निमंत्रण है, आप सब लोग आ सकते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय हो।